राधमाधव कुंज विहारे जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारे जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारे राधमाधव कुंज विहारे जय जय राधमाधव कुंज विहारे गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारे यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमोनतीरावनचारीयम् यमुनतीरा वनचारे जय राधमाधव कुंज विहारे जय जय राधमाधव कुंज विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nascha Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki Srimad Bhagavatam Skandanav Ajay 8 Shlok Sankhya 11 Swashariragdina Tavat Mahendra Harita Chetasaha Mahat Vetikramahata Hasmasat Abhavan Kshanat Sasariragdinata Van Swashariragninatavan Mahendra Rita Chetasaha Mahendra Rita Chetasaha Mahatvyatikramadhata. महाद्वैतिक्रमहत भस्मसाद् भवन् क्षणात् भस्मसाद्भवन्शनात् स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतसः महाद्व्यतिक्रमाहता भस्मसादवंशनात् स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतसः भस्मसाद्भवन्क्षणात् स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतसमात्मतां भस्मसादभवंशनात् स्वशरीरग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतस आत्मतिक्रमाहत भस्मसादभवंशनात् स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतस भस्मसाद्भवंशनात् स्वशरीराग्निना तावन् इन्द्रहृतचेतस महाद्व्यतिक्रमहत भस्मसादभवंशनात् माताजि स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतस महाद्व्यतिक्रमहत भस्मसादभवंशनात् स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतस महद्व्यतिक्रमद्महता भस्मसादभवंशनात् स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतस महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादभवंशनात् स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतस महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादभवंशनात् स्वशरीर अग्निना अपने शरीर में निकली अग्नि से तावत तुरंत महेंद्र इंद्र की चाल से हतचेतसा जिसकी बुद्धि हर ली गई है, महत महान पुरुष व्यतिक्रम हता उपासना करने के कारण पराजित भस्मसात जलाकर राख अभवन हो गए क्षणात क्षण भर में। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद, स्वर्ग के राजा इंद्र के प्रभाव से सगर के पुत्रों की बुद्धि हर ली गई है, जिससे उन्होंने एक महापुरुष का अपमान कर दिया, फलस्वरूप उनके शरीर में से अग्नि निकलने लगी और वे तुरंत जलकर राख हो गए। तात्पर्य, यह भौतिक शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आकाश का मेल है। शरीर के भीतर पहले से भी अग्नि रहती है और हमें इसका अनुभव है कि इस अग्नि का ताप घटता बढ़ता रहता है। सगर महाराज के पुत्रों के शरीर के भीतर की अग्नि इतनी गाढ़ हो उठी कि वे सब भस्म हो गए। एक महापुरुष को गति एक महापुरुष के प्रति दुर्व्यवहार के कारण अग्नि का ताप बढ़ गया था। ऐसा दुर्व्यवहार महत व्यतिक्रम कहलाता है। वे सभी शरीर की अग्नि से वे सभी शरीर की अग्नि से मर गए, क्योंकि उन्हें महापुरुष का अपमान किया था। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिताश्च विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में सगर की पुत्र किस प्रकार वो अपना शरीर त्याग किए या भस्म हो गए उसका वर्णन है। वैसे देखा जाए ये जो अध्याय है ये आठवां अध्याय है, तो ये आठवां अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है। इस आठवां अध्याय का पहला श्लोक से ही कोई तात्पर्य नहीं, इसलिए हम लोग ग्यारहवां श्लोक को कर रहे हैं। लेकिन पिछले अध्याय में भी यानी सातवें अध्याय में भी बहुत सारे श्लोकों का तात्पर्य नहीं है, खास करके ग्यारहवां अध्याय का या सातवां अध्याय का 21वां श्लोक से भी तात्पर्य नहीं है। तो हमको आज पिछले अध्याय के 21वां श्लोक से और आज का श्लोक तक हमको थोड़ा सा चर्चा करना है। तो संक्षिप्त में पिछले जो बीते गए श्लोक है जो इसका तात्पर्य नहीं है उनको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद आज का श्लोक के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। आपको मालूम है रोहित जो वापस अपने राज्य में आना चाहता था, महाराज मंदाता के वंशजों का वर्णन करते हुए हरिश्चंद्र का वर्णन हो रहा है। हरिश्चंद्र को पेट में रोग हो गया था, वरुण के प्रति अपराध किया क्योंकि उन्होंने एक यज्ञ नहीं किया था, या यज्ञ करने में विलंब कर रहे थे, वरुण देव प्रसन्न नहीं हुए थे, इसलिए हरिश्चंद्र के पेट में बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। तो ये हरिश्चंद्र राजा ने क्या किया, एक व्यक्ति को खरीदा और करने के बाद उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश मिलता है, जब आप कोई संकल्प लेते हो यज्ञ करने का, कोई भी सत्कार्य करने का संकल्प लेते हो, अगर नहीं लिया तो जीवन वैसे ही चलता रहेगा। संकल्प लेने के बाद पीछे हटने के द्वारा बहुत नुकसान होता है, बहुत अपराध को झेलना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र को यज्ञ करना था, उन्होंने निश्चय किया था, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से विलंब कर रहे थे। तो विलंब करने की वजह से उनको अपराध हुआ, उनके पेट में बीमारी हुआ, तब उनको एहसास हुआ नहीं मुझे अभी करना है। तब उन्होंने हरिश्चंद्र ने एक महान यज्ञ को आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाए, खास करके उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र को बुलाया और जमदग्नि उनको बुलाए, यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने के लिए। वशिष्ठ जो है उधर के मुख्य प्रीस्ट थे, यजमान थे, उधर के जो ब्राह्मण थे, मुख्य ब्राह्मण थे, और आयास जो है सामवेद का उच्चारण कर रहे थे। इंद्र ने देखा कि इन सबको इकट्ठा करके बड़ा भव्य यज्ञ कर रहा है, तो इंद्र बड़े प्रसन्न होके उनको उन्होंने एक सोने का रथ को प्रदान किया। और विश्वामित्र जो विश्वामित्र के पुत्र है वो भी उधर उपस्थित थे। विश्वामित्र ने देखा राजा हरिश्चंद्र इतना सुंदर यज्ञ कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, और निर्देश का ये अभी सच्चाई से कर रहा है, दिल से कर रहा है, और उन्होंने सोचा कि मैं अभी उनको विशेष ज्ञान प्रदान करूं, क्योंकि उन्होंने अभी यज्ञ किया है, अपना जो व्रत है उसको पूरा किया है। तब विश्वामित्र ने ज्ञान देने का संकल्प किया। तब विश्वामित्र जैसे उनको ज्ञान प्रदान किए, हरिश्चंद्र ने सोचा कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है, सारे यज्ञ का, सारे तपस्या का, एतावान् सांख्ययोगाभ्याम कर्मयोग परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसानन्ते नारायण स्मृति, मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, अंतकाल में भगवान का स्मरण करना। मैंने बहुत सारे कर्म के बंधनों को फंसा भोगा है, अपराध के कर्मों को भोगा है, अभी मेरे से सारे देवता प्रसन्न हैं, और खास करके विश्वामित्र ने मुझे अभी ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का पूरा फायदा उठा के मुझे मुक्त होना है। तब महाराज हरिश्चंद्र सबसे पहले अपना मन को शुद्ध किए, जो अनेकों अनेकों भोग की प्रवृत्तियों से भरा हुआ था, और उन्होंने सोचा कि ये भोगों की प्रवृत्तियां जो हैं वो मिट्टी का या पृथ्वी का परिणाम है। यानी कुछ भी भोग की प्रवृत्ति देखो, भोग की वस्तुएं देखिए, वो सब क्या है, मिट्टी है। तो इसलिए अपनी चेतना को ये जो भोग की जो वस्तुएं हैं जो खास करके पृथ्वी से बना है उससे पहले निवृत्त कर लिए। बाद में उन्होंने मिट्टी के बाद और एक क्या, पृथ्वी के बाद सूक्ष्म तत्व क्या होता है, पृथ्वी जल, तो ये जल से भी अपना चेतना को हटा लिए। बाद में धीरे धीरे से अग्नि से भी अपना चेतना को हटा लिए, वायु से अपने चेतना को हटा लिए, और आकाश से भी अपना चेतना को हटा लिए, और पूरा अपना जो अस्तित्व है, अपनी चेतना है, उन्होंने क्या किया, भगवान जो सारे इन भौतिक तत्वों के स्रोत है उस पर उन्होंने समा लिया। और ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पूर्ण तरीके से भगवान के चिंतन में मग्न हो गए और भगवान की नित्य सेवा में जुड़ गए। और उनके इस भौतिक जगत की कोई भी चीज के प्रति कहीं कुछ भी आकर्षण नहीं हो रहा था, केवल उनका एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण की सेवा करना। तब उन्होंने क्या किया, एक दिन वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके वो भगवत धाम लौट चले। ये नवे स्कंद का प्राय प्रत्येक अध्याय में आपको यही प्राप्त होगा। पिछले अध्याय में शौबरी मुनि का चरित्र था, शौबरी मुनि भी भगवान के धाम में गए, और इधर राजा हरिश्चंद्र का मानदाता के वंशजों का चर्चा हो रहा है, हरिश्चंद्र भी भगवान के धाम में गए, मुक्त हो गए। बड़े बड़े राजा थे, कितना भोग को अनुभव किए, उस भोग में या अनेकों अनेकों शक्ति सामर्थ्य की वजह से उनका अहंकार आया, अहंकार में उन्होंने कुछ अपराध भी किए और उस अपराध का फल भी भोगे। बाद में अंततः वो सब लोगों ने क्या किया, मुक्ति प्राप्त किया। इसलिए ये नवा स्कंद का मूल जो विषय वस्तु है मुक्ति। भागवत के 10 विषय वस्तु है, क्या है 10 विषय वस्तु, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण मन्वंतरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रय, निरोधो मुक्तिर आश्रय। कुछ लोग कहते हैं कि नवा स्कंद मुक्ति है, कुछ लोग और कहते हैं कि ये तो ईशानुकता है। लेकिन फिर भी चाहे मुक्ति हो ईशानुकता हो, अंततः ये ध्यान रखना चाहिए, दसवां स्कंद की तैयारी चल रहा है। जो नवा स्कंद हम पढ़ रहे हैं, नवा स्कंद पढ़ना का अर्थ क्या है, दसवां स्कंद में प्रवेश होने की तैयारी। जैसे नौवीं कक्षा में कोई बच्चा है, उसकी उसका उद्देश्य क्या है, दसवां कक्षा में जाने का, दसवां कक्षा में प्रवेश करना है दसवीं कक्षा में, तो नवीं कक्षा को उसको पास करना होगा। उसी प्रकार दसवां स्कंद में अगर किसी को प्रवेश करना है, नवां स्कंद को पढ़ना होगा। नवां स्कंद का पढ़ने का अर्थ क्या है, ये साक्षात्कार। क्या साक्षात्कार, इतना भोग की प्रवृत्ति है इन राजाओं के पास, सब लोग छोड़ छाड़ के सब भगवान की धाम गए, मुक्ति प्राप्त किए। यानी इस जगत की कोई भी भोग की वस्तु वो हमारा काम का नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा राज्य क्यों ना हो, कितने भी स्त्रियां क्यों ना हो, शौबरी मुनि के कितने 5000 बच्चे, 50 पत्नियां, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो इससे यही सीख मिलता है, इस जगत का कोई भी वस्तु मेरा काम का नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल थिंग, कुछ भी मेरा काम का नहीं है, कोई भी वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए वैराग्य, वैराग्य की भावना से दसवां स्कंद में प्रवेश कर सकते हैं। वास्तविकता में जैसे दसवां स्कंद अगर वृंदावन समझे, तो वृंदावन में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके अंदर कोई विषय वासना नहीं है। विषय वासना से युक्त होकर आप ट्रेन टिकट लेके वृंदावन जा सकते हो, लेकिन वृंदावन नहीं जा सकते हो। वृंदावन जाने के लिए क्या करना होगा, छाड़िया विषय वासना, मेरे मन में जो विषय वासना जाने के बाद ही, हे रिबो अमी वृंदावन, मैं वृंदावन जा सकता हूं। तो ये हमारे मन में इन विषय वासनाओं को दूर करने के लिए एक बहुत महान साधन यही है। जिनके पास इस प्रकार की विषय वासना है और विषय वासना को संतुष्ट करने के लिए सामग्री भी है, वो लोग उन सबको छोड़ के चले गए, तो उनको सुन के ऐसा लगता है कि मैं तो बेवकूफ हूं, आई एम फूल, मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूं मेरे पास तो है नहीं, जिन चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूं ऑलरेडी पहले से वो वस्तुएं जिसके व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में है, वो व्यक्ति इन सबको छोड़ के गया, इसका अर्थ क्या है, उसमें कुछ नहीं है। तो ये वैराग्य की शिक्षा जो है, ये 9वें स्कंद में बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। राजाओं का ये घटना है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे किसी के पास कोई भिखारी है उससे वैराग्य लिया, भिखारी वैराग्य लेगा तो उसका क्या फायदा, उसे क्या प्रेरणा, इसके पास कुछ था नहीं इसलिए वो छोड़ दिया, छोड़ना है क्या। ठीक है, कोई बड़ा व्यापारी था, उसका जो व्यापार डूब गया, वही राज्य ले लिया। ऐसे लोगों की कहानी नहीं है जिनके पास सारा समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप उसको छोड़ के गए। उन लोगों की कहानियां हैं नवे स्कंद में। तो कोई आकस्मिक घटना हुई जिसकी वजह से उनको सारा जो संपत्ति छीन लिया गया उनसे, इसलिए वैराग्य ले लिए, उन लोगों की घटना नहीं है। सब कुछ होने पर भी वो अपने आप स्वेच्छा से छोड़ दिए, इसको वैराग्य कहा जाता है। यानी ज्ञान के बल पे उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है उसको वैराग्य कहा जाता है। तो वैसे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, चलो छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, तो ये वैराग्य जो है वास्तविक वैराग्य नहीं है। तो ये जो वास्तविक वैराग्य के द्वारा जब हम दसवां स्कंद में प्रवेश करते हैं, तब दसवां स्कंद यानी कृष्ण लीलाओं को हम आस्वादन कर सकते हैं। अभी ये अध्याय समाप्त होने के बाद आगे की वंशजों का वर्णन किया जा रहा है कि अभी हरिश्चंद्र जो हैं वो मुक्त हो गए। आगे की अध्याय यानी इस अध्याय का चर्चा है, आठवां अध्याय का, सगर के पुत्र कपिल मुनि से उनका मुलाकात। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आगे कहते हैं, जो रोहिता हरिश्चंद्र की पत्नी थी, उनकी पुत्र है हरिता, हरित का पुत्र था चंपा, और उन्होंने चंपापुरी नाम बड़ा शहर को निर्माण किया। चंपा का पुत्र था सुदेव एंड उसका पुत्र था विजय, विजय का पुत्र था बारुक, बारुक का पुत्र था वृका, और वृका जो है उसका पुत्र था बाहु का। जो बाहु के जो दुश्मन थे वो बाहु के सारे संपत्ति को हर लिए, तो उन्होंने सोचा कि सारा संपत्ति हर गया, चलो मैं मानवप्रस्थ ग्रहण करता हूं। तब उनकी पत्नी के साथ वानप्रस्थ ग्रहण किए और बाहुक का मृत्यु हो गया क्योंकि वो वृद्ध हो गए। उनके जो एक पत्नी थी उन्होंने सोचा कि मुझे अभी अपनी पति के साथ सती ग्रहण करना है, लेकिन उधर औरव नामक एक मुनि थे, उन्होंने कहा कि आप सती नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके गर्भ में शिशु जीवित है, शिशु पल रहा है। ऐसा वर्णन है जिस जो पत्नी गर्भवती होती है वो कभी भी सती नहीं ग्रहण कर सकती। और नामक ऋषि ने इस पत्नी को बचाया और उनको अच्छी तरह संरक्षण दिया, उनको संरक्षण देके वैसे वो जी रहे थे उनके आश्रम में। तब ये जो उनकी अन्य बहु के अन्य पत्नियां थी, को वाइफ थी, तो उस पत्नी ने क्या किया, ये बाहुका को जहर पिला दिया। क्यों? ये चाहती थी बस सारा संपत्ति मेरे पास आ जाए। मेरी और एक मेरे पति का और एक पत्नी है, अगर उनका पुत्र हो जाएगा तो मेरे पुत्रों को संपत्ति नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, उनको मार दूंगे करके उन्होंने जहर पिलाया। लेकिन ऋषि की कृपा की वजह से अंदर जो बच्चा था वो जीवित रहा। तो क्योंकि उस बच्चे के अंदर जहर भी पहुंची थी, या माँ ने जहर खाई थी, उसके साथ साथ में बच्चा भी खाया था। जब बच्चा जन्म लिया उनका नाम बड़ा सा गरा, सा मतलब अलोंग विथ यानी साथ में, किसके साथ में था वो, गरा। हाँ, तो अगरा का अर्थ है पॉइजन यानी जहर, तो इससे उसका नाम बड़ा सगर। और सगर महाराज और उनके गुरु यानी औरव के निर्देशन में चलते हुए उन्होंने क्या किया, यवन साका हायवस बारबरस ताल ज्ञास, इन सब बड़े नीच कुल के थे और एकदम आदिवासी जैसे थे वो सब, उनके चरित्र बराबर नहीं था, उनके व्यवहार ठीक नहीं था। ये सगर राजा ने क्या किया, उन सब को दंड नहीं दिया, उन सबको उन्होंने सुधारा। एक 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 प्रकार के लोग थे। कुछ लोग विचित्र प्रकार के बाल को बना के रखते थे, कुछ लोग जो है कपड़े नहीं पहनते थे, कुछ लोग जो हैं या कॉपीन या लंगोट नहीं पहनते थे, और अनेकों अनेकों प्रकार के विचित्र व्यवहार करने वाले लोग थे। सगर राजा ने उन सब के प्रति दया दिखाया, उन सब को उन्होंने सुसंस्कृत बनाया और उनको उन्होंने मारा नहीं। और वो राजा के निर्देशन में सगर महाराज ने एक बड़ा सा अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जब चल रहा था उस समय सारे देवता प्रसन्न हो गए और महान महान संत आए थे, विद्वान आए थे, वो सब लोग उधर उपस्थित हो गए उस यज्ञ में। तब इंद्र को रहा नहीं गया। इंद्र ने सोचा कि ये जो अश्वमेध यज्ञ है इसको संपन्न होने दूंगा तो मेरा कुर्सी वापस हिल जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड इंद्र का। आप कोई भी पुराण में कहीं भी जाइए उनका यही चिंता रहता है, मैं कुछ ना कुछ करूं। इंद्र स्पेशल कैरेक्टर है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा कुर्सी हिल जाएगा। इसने सोचा कि अभी अश्वमेध यज्ञ तभी होगा जब अश्व होगा। मैं क्या कर दूंगा, अश्वमेध होने से पहले, यज्ञ संपन्न होने से पहले अश्व को चुरा लूंगा। तो अश्व को चुराने के लिए वो पहुंचे। अश्व को चुराने के लिए जैसे इंद्र ने पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, सगर के दो पत्नियां थी, सुमति और केशनी। सुमति उनके जो शक्ति के उनके शक्ति के द्वारा बहुत वो प्रभावित थी और उनके जो पिता के उनके जो पुत्र है बहुत शक्तिशाली थे, सुमति के पुत्र। तो उनकी पिता की आज्ञा के अनुसार वो सब लोग पहुंचे कहां, इनको ढूंढने के लिए, अश्व को ढूंढने के लिए। ये अश्व कहां गया इसको ढूंढने के लिए वो बहुत दूर दूर तक पहुंचे और जहां जहां जा रहे थे उनको अश्व मिल नहीं रहा था। तब वो पृथ्वी को खोदने लगे, कहां है ये अश्व, कौन उठा के लेके गया। जहां जहां ये सगर के पुत्रों ने ये खुदाई किया वो उस जगह का नाम पड़ा सगरा। इसलिए हम लोग जो सागर को सागर बोलते हैं, क्यों, उसकी वजह से बोलते हैं, क्योंकि सागर के पुत्र इस अश्व को ढूंढने के लिए जहां जहां खुदाई किया उस जगह को अश्व कहा, उस जगह को सागर कहा गया है। तो जैसे सागर के पुत्र पहुंचे उत्तरी पूर्व उत्तरी दिशा में, यानी पूर्व उत्तरी मतलब मंदिर का ये जो जगह पूर्वोत्तरी है, यानी ईशान्य कहा जाता है इसको। तो जैसे उधर पहुंचे तो उधर उन्होंने देखा एक बड़ा सा सुंदर आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है। और कपिल मुनि का आश्रम में ये अश्व था इनका। और जैसे उन्होंने सोचा कि इधर अश्व है हमारा, चलो इसने चोरी किया, ये है चोर, इसको मार देंगे, ये चोरी करके आंख बंद करके बैठा है तो ऐसा लगता है बहुत पापी व्यक्ति है, इसको मार दो, इसको मार दो। इस प्रकार जोर जोर से चिल्ला के ये सागर के 60,000 पुत्र सब लोगों ने अपना तलवार उठाए, अपना अस्त्रों को उठाए, ये ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे। ये जब ऋषि के आश्रम, किसका आश्रम था, वो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 सागर के पुत्र पहुंचे कपिल के आश्रम में, पहुंच के इस प्रकार वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसके बाद का श्लोक है ये, यानी अभी तक हमने ये श्लोक के जो पहले के श्लोक जिसका तात्पर्य नहीं है उस सबका चर्चा किया अभी। और जैसे सागर पुत्र ने इस प्रकार तलवार उठाए तो इस श्लोक में कहा गया है, स्व शरीराग्नि आग्निना तावत महेंद्र हृत चेतसा, महेंद्र हृत चेतसा। इसके ऊपर विशेष तरीके से ध्यान देंगे। सागर के पुत्र इस प्रकार क्यों कहे, वैसे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, उनका अश्व को देख के उधर उनका बुद्धि चलाना चाहिए था। एक ऋषि है, ये आश्रम है, उनको ही अश्व से क्या लेना देना, ये विचार करना चाहिए था। वो विवेक और विचार करने की शक्ति जो है इंद्र ने उनसे हड़प लिया। वैसे सागर के पुत्रों के कोई दोष नहीं था, इंद्र शक्तिशाली होने के नाते उनके 60,000 पुत्रों के बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तो इससे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमको ध्यान देना है, कभी भी हमारे अंदर कोई भी वस्तु को देखते ही कुछ विचार आता है, उस विचार या कोई हमारा मन में कोई बात आता है उसके ऊपर विशेष तरीके से बार बार विचार करना चाहिए, दो बार सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे करना, ये अपराध का कारण होता है। अपराध से अगर बचना है, कोई भी कार्य करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार करना चाहिए। अब इंद्र ने क्या किया था, उन सबको बुद्धि हर लिया था। अगर ये सगर के पुत्र एक बार विचार किए होते कि एक साधु है, आंख बंद करके भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा है, अगर उनको चोरी करना ही होता, ये अशुकोलों के कहीं अशुकोले के कहीं और चले जाते, इतना दूर गए तो कहीं और भी जाके चले जाते थे, लेकिन ये तो आश्रम है, इस आश्रम में अशु होने के नाते तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चोर कुछ और हैं, कोई और है, उसने इधर अशु को बांध के गया। इंद्र को मालूम था कि अगर मैं इन 60,000 पुत्रों से युद्ध करने जाऊं हो नहीं पाएगा, ये 60,000 पुत्रों का नाश तभी होगा जब वो अपराध करेंगे। इंद्र जो है वो कभी कभी नहीं, हमेशा ये चाहते हैं जो लोग उनके कंपटीशन में हो सब लोग का नाश हो, और इंद्र जानते हैं कि अपने आप से तो नाश नहीं हो पाएगा, मैं उनके ऊपर युद्ध नहीं कर सकता हूं, उनका नाश तभी होगा जब एक महत्व के प्रति वो अपराध करेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार कंस के साथ भी इंद्र ने ऐसा किया था, कंस देव की वसुदेव को रथ की ओर बिठा के लेके जा रहे थे, यानी देव की और वसुदेव कौन है, भगवान के महान भक्त है, और कंस उनको रथ की ओर बैठे के लेके जा रहे, तो इंद्र ने देखा अरे ये तो भक्तों का सेवा कर रहा है, भक्तों का सेवा जो करता है भगवान उनको कभी नहीं मारेंगे। इंद्र ने सोचा अगर कंस को मारना है तो अगर ये भक्त का सेवा कर रहा है तो भगवान ही मार सकते हैं कंस को, अगर ये भक्तों का सेवा कर रहा है तो ये नहीं मारे, ये नहीं मरेगा, अभी कुछ करना होगा। ऐसा योजना बनाए ताकि ये इंद्र जो है, कंस जो है, भक्तों के प्रति अपराध करे। जैसे भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, इंद्र को ये बात मालूम था, इंद्र को ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला होगा, इसलिए वो हमेशा इस प्रकार की जादू करते हैं। तो ने कहा अभी देखते हैं ये सगर के पुत्रों को क्या करना होगा, कपिल मुनि के चरण कमलों के अपराध कराना होगा, वो जितना अपराध करेंगे उसका उतना नाश होगा, ताकि मैं अपना पोजीशन बना के रख सकता हूं। ये इंद्र का विचार है। तो महेंद्र हितचेतसा, इंद्र के वजह से उनका जो बुद्धि है वो हर लिया गया था। तो एक चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी हमारा चेतना अपना विवेक को खोना नहीं चाहिए। जैसे कुलशेखर आलवार कहते हैं ये जो विवेक है, हमारी बुद्धि है जो भगवान ने दिया है, वो महान धन है। ये महान धन जो बुद्धि है, विवेक है, उसके द्वारा विचार करना चाहिए, करने के बाद सोचना, बोलने के बाद सोचना, वो जो है वो कम बुद्धि वाला करता है। कोई भी चीज बोलने से पहले या कोई भी चीज करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए, क्या यह शास्त्रोक्त है, क्या सच में तर्क में उपयुक्त है मुझे करना। विचार करके जो करता है, विचार करके जो बोलता है, वो अनेकों अपराधों से बच सकता है। जो मन में आया जो बोल दिया, जो मन में आया वो कर दिया, ये बुद्धिहीन व्यक्ति कार्य होता है। कुछ लोग बड़ा गर्व लेते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो बहुत सरल व्यक्ति हूं, जो मन में आता है बोल देता हूं, ये मूर्खता है, ये सरलता नहीं है। जो मन में आता है कर देता हूं, मैं तो सीधा साधा व्यक्तियों को, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूं, ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को आप अपने अंदर रखिए, विचार करके बोलिए। जो मन में आया बोल देना, जो मन में आया कर देना, ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मन में कुछ और है, कुछ और बोल रहे हो, ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो विचार करता है, जो मेरे मन में आया क्या सही है, क्या उचित है, क्या वो फिल्टर करता है अपनी बातों को। वैसे जो मुंह में आया बोल देना, ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। मूर्ख व्यक्ति क्या है, एक जानवर का लक्षण है। मान लीजिए आप किसी घर में गए तो उस घर का कुत्ता है, आपको देखते ही भूख देना शुरू करेगा, है कि नहीं। ये पूछेगा आप कौन हो, कहां से, कुछ नहीं पूछता है। लेकिन उधर का जो व्यक्ति है, जो मालिक है उस घर का, पूछता है आप कहां से हो, क्या हो, विचार करके आपको अंदर लेना नहीं लेना, क्या बात करना, वो सब चीजें। लेकिन कुत्ता क्या देखता है, देखते ही भौंकना शुरू करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सगर के पुत्रों ने खाली उन्होंने देखा अश्व है, इधर मुनि है, इसने चुराया, इसको मारो, अभी नाटक कर रहे हैं आंख बंद करके, विचार नहीं किया लोगों ने। इसलिए विचार विवेक ये बहुत महान धन होता है। इसलिए स्व शरीर आज्ञातावन महेंद्र हित चेतसा, ये महेंद्र की वजह से हमारी बुद्धि जो है खत्म हो गई। भगवदगीताएं भगवान ये कहते हैं कि ये जो काम है वो क्या करता है, हमारी जो विवेक को वो चुरा लेता है, हमारी चेतना को चुरा लेता है, ढक देता है। इसलिए कहा गया है आवृत्तम ज्ञानमेतेना ज्ञानेन नित्य वैरिणा काम रूपेण सौंतया दुष्पूरेण अनलेन च। और जगह कहा गया है हमारी चेतना को हर लेता है, क्या हर लेता है, ये काम नामक जो चीज है, भौतिक इच्छा जो है हमारी बुद्धि और चेतना को हर लेता है। तो इसी प्रकार इंद्रिय ने ये इन लोगों का हर लिया था, इसलिए सगर पुत्र इस प्रकार व्यवहार किए, क्योंकि किसी ने किसी तरीके से इस प्रकार का दुर्व्यवहार किए। क्या दुर्व्यवहार किए, महत व्यतिक्रमहा, ये दूसरा लाइन में जो पहला शब्द है, महत महान व्यक्ति थे। महान व्यक्ति कौन है इधर, कपिल मुनि। कपिल मुनि के प्रति उन्होंने क्या किया, व्यतिक्रम किया, यानी अपराध किया, मर्यादा व्यतिक्रम किया। उन्होंने मर्यादा नहीं दिखा, एक राजा के पुत्र होने के नाते एक ऋषि के आश्रम में जब जाएंगे, ऋषि को प्रणाम करना चाहिए, उनको आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, उनको अच्छी तरह से आदर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, व्यतिक्रम किया, मर्यादा व्यतिक्रम किया, अपनी मर्यादा से परे चले गए। वो लोग सोच रहे हैं कि हम तो राजा है, तो ये विचार करना करके सोचना चाहिए। जब हम कोई भी चीज बोलते हैं या कुछ कार्य करते हैं, क्या ये करने की या बोलने की मेरा कोई हिम्मत है कि नहीं, मेरा कोई अवकाश है कि नहीं, मेरा कैपेसिटी है कि नहीं। जब हमारा अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार ही हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए। नहीं तो अधिकार को जब उल्लंघन किया जाता है तब उसको मर्यादा व्यतिक्रम कहा जाता है। इधर उनकी जो सगर के पुत्रों को कपिल मुनि को इस प्रकार बोलने की कोई अधिकार नहीं था। अगर उनको अश्व मिल गया तो शांति से अश्व को लेके आ सकते थे, उनका कार्य था अश्व को लेके आना। तो मर्यादा का व्यतिक्रम करने की वजह से ये महान अपराध हुआ। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा व्यवहार करूं जिसके द्वारा दूसरों के प्रति दूसरों को दुख लगे तभी अपराध माना जाता है। नहीं, भले ही आप जिसके प्रति अपराध कर रहे हो वो महान भक्त होने के नाते वो अपराध माने ना माने, लेकिन अपराध अपराध होता है। जैसे एक शुद्ध भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, वो क्या है, वो शुद्ध भक्त कोई भी चीज को, मेरे कोई व्यक्ति को हो, ये नहीं सोचते कि इससे दुर्व्यवहार किया, इसने मेरे प्रति अपराध किया। क्यों, वो उनका स्वभाव है नम्र रहना। नम्रता उनका स्वभाव होने के नाते हमेशा उनका यही भावना रहता है कि ये व्यक्ति को माफ कर दूं, या व्यक्ति ने मुझसे मेरे प्रति अपराध ही नहीं किया तो माफ करने की क्या बात है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति जो है, भगवान ने ऐसे नियम बनाए कि अपराध करता है तो उसका रिएक्शन मिलना ही है। हमने इसी स्कंद में देखा अम्बरीश महाराज का, दुर्वासा का जो कार्य है, वो कार्य के द्वारा उन्होंने एक भाव भूत को प्रकाशित किया, उसके द्वारा अम्बरीश महाराज कभी भी ये नहीं सोचे कि दुर्वासा ने मेरे प्रति अपराध किया। लेकिन भगवान ने निश्चय किया था, क्या निश्चय किया, ये सुदर्शन चक्र है। तो सुदर्शन चक्र को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया भगवान ने, जहां कहीं मेरे भक्तों के प्रति अपराध होता है आप अपना काम कर देना। वैसे सुदर्शन चक्र ही नहीं, भगवान ने ऐसे अनेकों अनेकों नियम बना के रखे प्रकृति के नियम। तो प्रकृति के नियम ऐसा है कि आप कोई महान व्यक्ति के प्रति अपराध करोगे, अनादर करोगे, तो अपने आप उसका रिएक्शन आता है। भले ही वो महान व्यक्ति आप जिसके प्रति अपराध किए वो अपराध उसको स्वीकार करे ना करे। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी कपिल मुनि वैसे के वैसे ध्यान में थे, लेकिन क्या हुआ, क्या स्व शरीराग्निना तावन, उनके शरीर से यानी स्वयं वो सगर के 60,000 पुत्रों के शरीर से एक अग्नि प्रकट हुआ। अग्नि प्रकट हुआ तो क्या हुआ, भस्मवात अभवन क्षणात्, भस्म हो गए और राग बन गए। कब हुए, क्षणात्, तुरंत। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बहुत विशेष बात को लिखते हैं। वैसे आगे के श्लोक में इस बात को और विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कपिल मुनि को बहुत क्रोध आया और जैसे उन्होंने आंख खोला उनकी आंख से अग्नि प्रकट हो गए, सारे कपिल मुनि के या सगर के पुत्र मर गए। वो गलत बात है, क्योंकि कपिल मुनि इतने शांत थे और उनके अंदर कोई रजस और तमस की भावना है ही नहीं, शुद्ध सत्व में स्थित है। वैसे व्यक्ति के हृदय में या उनकी आंखों में क्रोध आना ये संभव नहीं है। लेकिन उन्हें अपराध किया तो क्या हुआ, उनकी शरीर से अग्नि है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे हर व्यक्ति के शरीर में अग्नि है कि नहीं, जटराग्नि है जिसकी वजह से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। कहीं बुखार आता है तो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, अग्नि है। लेकिन जब कोई भी अपराध करता है हमारे शरीर में जो अग्नि है वो बढ़ जाता है, और ये अग्नि इतना बढ़ता है कभी कभी वो सगर के पुत्रों को इतना तीव्रता से अग्नि बढ़ गए कि वो जल के राख हो गए। वैसे अगर छोटा मोटा अपराध होता है तभी भी अग्नि बढ़ता है। हमारे अंदर जो अग्नि है उसको पित्त कहा गया है, अग्नि और जल का मिश्रण है पित्त। जब व्यक्ति के अंदर पित्त बढ़ता है वो पागल हो जाता है, जैसे बंदर व्यवहार करता है ऐसे व्यवहार करता है। इसलिए जब कोई अपराध करता है उनका मन स्थिरता नहीं रहता, वो और पागलपंथी की ओर जाता है और ऐसे ऐसी बातों को बोलता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है जो उचित नहीं है। पागलपंथी जो है वो अपराध के कारण है, वो पाप के कारण है। इसलिए भगवद गीता भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नृणम प्रमत्तक कुरुते विकर्मा यदिंद्रिय प्रयाप्रणोति, नृणम प्रमत्तक कुरुते विकर्मा, नृणम प्रमत्तः, प्रमत्तः का अर्थ क्या है, पागलपंथी। ये पागलपंथी में सब लोग विकर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इंद्रिय प्राप्नोति यानी इंद्रिय तृप्ति के प्रति कामुकता जब व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है, कामवासना जब बढ़ जाता है, भौतिक इच्छा जब बढ़ जाता है उसके अंदर पागलपंथी बढ़ जाता है। वैसे शारीरिक स्तर में देखा जाए आयुर्वेद के हिसाब से उसके अंदर बहुत पित्त बढ़ जाता है, वो पित्त बढ़ गए उसका सर्द में घुस जाता है, सरदर्द होना शुरू करता है और उसको पागल बना देता है और उसका शरीर को नष्ट करता है। ये पित्त का काम ही शरीर को नष्ट करना, जैसे हार्ट में होल हो गया, किडनी फॉइल हो गया, ये सब क्या है, पित्त का काम है। कोई इन्फेक्शन जो है शरीर में, इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है आजकल मॉडर्न साइंस के हिसाब से, उनको मालूम नहीं इन्फेक्शन होता क्या है, उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं। इन्फेक्शन मतलब पित्त, यानी पंच महाभूतों में जो पृथ्वी और जल का मिश्रण है कफ, और जल और अग्नि का मिश्रण है पित्त, और वायु और आकाश का मिश्रण है वात। कफ पित्त वात का विज्ञान जो है वो आजकल के वैज्ञानिकों को नहीं मालूम, लेकिन ये जो अग्नि जो बड़ा है उनके शरीर में, अग्नि कुछ और नहीं है, ये पित्त है। ऐसा कहा गया है ये जो पित्त इतना शक्तिशाली होता है, अगर ये एकदम तीव्र हो जाता है हमारा शरीर को पूरा भस्म करके राख करने की शक्ति पित्त के अंदर है, इतना शक्तिशाली हो जाता है ये पित्त। तो उनके शरीर में अग्नि जो है वो बढ़ गया, वो बढ़ के उनको पूरा भस्म कर दिया। तो इससे बहुत सावधान रहना चाहिए, जब भी हम कोई महान व्यक्ति को देखते हैं उनको आदर देना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि उनको क्यों आदर दिया जाए, वो तो योग्य नहीं है। आपको आदर देने में आपको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। हमेशा दूसरों को आदर देने की जो शिक्षा है हमको ग्रहण करना चाहिए, आदर देना सीखना चाहिए। कहीं भी जाए कोई व्यक्ति के पास, एक महान व्यक्ति के पास जैसे जाएंगे उनको आदर करना, ये तुरंत हमको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो इस श्लोक में प्रभुपाद इसी बात को लिखते हैं, द फायर इंक्रीज्ड, द हीट वाज ड्यू टू देयर मिसबिहेवियर टुवर्ड्स द ग्रेट पर्सनैलिटी. एक महान व्यक्ति के प्रति अपराध की वजह से या दुर्व्यवहार की वजह से उनके अंदर ये जो अग्नि बढ़ गया. आयुर्वेद में अभी लिखा गया है कि जब आप कोई महान व्यक्ति को आदर नहीं देते हो तो क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है, वायु जो है ऊपर की ओर बहना शुरू करता है, वायु ऊपर की ओर बहना शुरू करता है. मान लीजिए कोई महान व्यक्ति आए, आप बैठे हो, उस समय आपको खड़े होना चाहिए क्योंकि स्वाभाविक तरीके से उनकी उपस्थिति से वायु ऊपर की ओर बहता है, तो आपको खड़े होना चाहिए. अगर आप खड़े नहीं होगे तो क्या होगा, तो वायु तो ऊपर की ओर बह रहा है लेकिन आप अपने अहंकार की वजह से उसको दबा के रखे हो, उसकी वजह से प्राण निकल सकता है, निकल सकता है या निकल जाएगा. ये हुआ था कब, जब बलराम जी आए. जैसे बलराम जी आए, नैमिषारण्य के 88,000 ऋषिगण वो ये नहीं सोचे थे कि बलराम जी आए इससे खड़े होना है, वो सोच विचार करके खड़े, स्वाभाविक तरीके से खड़े हो गए. क्यों, उनके अंदर अहंकार नहीं था. जो अहंकार नहीं था उनके अंदर नम्रता थी, उसकी वजह से उनकी इस जो प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जो क्रिया हो रही है वायुओं के ऊपर की बहाव, उसकी वजह से वो खड़े हो गए. लेकिन सुत गोस्वामी ने सोचा बलराम जी आने तो आने दो, मैं तो व्यासासन की ओर बैठा हूं. तो वो अहंकार की वजह से अपनी प्राणवायु को दबाए, तो उसकी वजह से बलराम जी ने एक छोटा सा घास का तिनका लेके उनको मार दिए. तो ये स्वभाव है महान व्यक्ति को आदर देना. आप देखिए कभी कभी हमारे मन में भी कभी आया होगा, कोई महान व्यक्ति आए समझ लीजिए, तुम्हारे ना स्वाभाविक प्रवृत्ति आती है उसको प्रणाम करना चाहिए, खड़े होना चाहिए, आदर देना चाहिए. लेकिन क्या चीज दबा के रखता है इसको, क्या चीज है जो हमको ये करने नहीं देता है, अहंकार हमको ये करने नहीं देता है. तो इसलिए यह अहंकार जो है हमारा मृत्यु का कारण है, हमारा आयुष कम होने का कारण है. आयुष कम हो जाता है व्यक्ति का जो प्रकृति के अनुसार जीवित जीता नहीं है. लेकिन इंद्र का भी ये षड्यंत्र था, वो तो षड्यंत्र में सगर के पुत्र फंस गए. ये षड्यंत्र में सगर के पुत्र क्यों फंस गए, क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छा थी. ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना चाहिए. हमारे अंदर जो षड्यंत्र होता है, हमारे अंदर हमारे प्रति अपराध होता है, भले ही हमारे निजी इच्छा की वजह से नहीं हो, दूसरों की षड्यंत्र की वजह से हो, तो भी हमारे अपराध माना जाता है. क्यों, क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छा है. जिसके पास भौतिक इच्छा है उसके ऊपर षड्यंत्र रचाया जा सकता है, उसको मूर्ख बनाया जा सकता है. तो इंद्र ने सोचा इन लोगों की बस एक ही इच्छा है, अश्व को प्राप्त करना, चलो उनको उनके ऊपर मैं षड्यंत्र रचाऊं. इसलिए किसी के षड्यंत्र में फंसना भी, वो फंस के अपराध करना भी अपराध माना जाता है. इसलिए बुद्धिहीन होना, मूर्ख होना और मासूम होना, ये जो चीजें हैं, ये कोई अपराध मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं मालूम था. प्रभुपाद जी कहते हैं अगर जानबूझ के भी अगर हाथ को अग्नि में डालोगे तो भी जलेगा, अनजाने में भी अगर हाथ डालोगे तो भी जलेगा. तो इसलिए अज्ञान हमारा, अज्ञान की वजह से किया, मालूम नहीं था, ये बच्चा है, ये सब चीजें आध्यात्मिक स्तर में ये सब कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है, इस प्रकार की बहाना नहीं चलता है. हम हमको तो नहीं मालूम था, मालूम था नहीं मालूम था इसलिए हमने गलती कर दिया. नहीं मालूम करने के मालूम होने पर गलती करना उतना ही सजा मिलता है, मालूम होने के बाद भी गलती करना उतना ही सजा मिलता है. सजा तो सजा है, आग तो आग चलेगा ही, इसलिए मालूम करना चाहिए. जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि कोई ट्रैफिक रूल तोड़ देता है, पुलिस ने पकड़ लिया तो उसने कहा कि फाइन भरो. नहीं, हमको मालूम नहीं था. नहीं, मालूम करके गाड़ी चलाओ. तो ये बड़ा ऑफेंस है, मालूम होके जो गलती किया चलो ठीक है और एक फाइन है. अच्छा, मालूम किए बिना गाड़ी चलाया, ये दुगना अपराध है. तो लोग क्या करते हैं, अपने अपराधों को थोड़ा सा ऊपर ढकने के लिए, कारण बताने के लिए बहाना बनाते हैं, मालूम नहीं था, मैं तो उसकी चाल में फंस गया, बहुत सारे चीजें बताते हैं. लेकिन फंसा क्यों, ये डबल अपराध है. तो इंद्र ने ऐसा चाल चलाया जिसके अंदर सगर के पुत्र उस चाल में फंस गए। इसलिए इधर कहा गया है महेंद्र हित चेतसा, क्योंकि उनके अंदर बौद्धिक इच्छा थी। ये ध्यान में रखिए, अपने हमारे अंदर जितना बौद्धिक इच्छा रहेगा उतना दूसरों के षड्यंत्र में फंसने का बहुत सारा चांसेस है। इसलिए भौतिक इच्छा ही हमारा मूल कारण है अपराध का। तो ये षड सगर के पुत्रों के जीवन से हमको ये सब बातें मालूम पड़ता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? इंद्र को कोई अपराध लगा कि नहीं, आपका प्रश्न ये है? इंद्र को अपराध लगता है और अपराध का फल भी भोगता है। इंद्र जो है वो एक स्पेशल भक्त है भगवान का। पूरा भागवत में हर जगह वो उनका जिक्र आता है। भगवान के अनेकों अनेकों प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्लियरली कहते हैं इंद्र और इनकी इत्यादि जो देवता है उनके अनुचर है, दे आर मेटीरियलिस्टिक डिवोटीज, वो भक्त हैं। इंद्र का स्वभाव क्या है, जब ये सब करेंगे लेकिन जब उनके बस कंट्रोल के परे हो जाता है कुछ, तो भगवान की शरण में जाएंगे, हे भगवान बचाओ। तो भगवान क्या करेंगे, इंद्र को बराबर शिक्षा देंगे। जैसे दधीची मुनि का स्टोरी है, इंद्र सोचा था कि मैं दधीची को मार दूंगा क्योंकि उन्होंने संजीवनी विद्या को अश्विनी कुमारों को दिया, लेकिन बाद में वही इंद्र को भगवान ने भेजा, जाओ जिस दधीची के प्रति अपराध किया ना उनके पास जाके तुम शरण लो, उनका उनकी रीढ़ की हड्डी मांगो, उनका जीवन को मांगो। अभी इंद्र जो है वो ऐसा भक्त है भगवान का जिसके माध्यम से भगवान शुद्ध भक्तों की ख्याति को बढ़ाते हैं, है कि नहीं? दधीची का जो महत्ता है वो उसका प्रचार कैसे होगा इंद्र जैसा कैरेक्टर होगा तो, है कि? तो वृत्तासुर का महत्ता का वर्णन कैसे हुआ है, पूरा इंद्र का विजय हुआ उस प्रसंग में, वृत्तासुर की मृत्यु हो गई, लेकिन उस प्रसंग को हम इंद्र का प्रसंग नहीं कहते, किसका प्रसंग कहते हैं, वृत्तासुर का प्रसंग कहते हैं। यानी इंद्र का जीत में भी हार है, वृत्तासुर का मृत्यु में भी जीत है। तो वैसे भक्तों की विशिष्टता को प्रकाशित करने के लिए इंद्र जैसे भक्तों की आवश्यकता होता है भगवान की लीलाओं में, ये है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, 4 तारीख को स्नान यात्रा है, सबको आना चाहिए। 1 तारीख को क्या है, निर्जल एकादशी है, और 21 जून को रथ यात्रा है, सबको अच्छी तरह से प्रचार करना चाहिए। और काउंसिलर्स मीटिंग कब है, 12 बजे है, और छप्पन भोग सबको बनाना चाहिए, कम से कम सबको मिनिमम 2 आइटम बनाना चाहिए। कहाँ है फिर सत्यवेद प्रभु, कहाँ है? हाँ, उधर टेबल के पास आपको टोकरी मिलेगा, आज आप नाम लिखा दीजिएगा कि कितना भोग बनाएंगे जगन्नाथ जी के लिए, उनका विशेषता सब सत्यवेद प्रभु बताएंगे, आप अभी से तैयारी कर सकते हैं बनाना। हाँ, वो संडे पीस पे अनाउंस करता हूँ। ठीक है, श्री प्रभुपाद की रथयात्रा महोत्सव की।